सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे इस पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूं संजय बैनर्जी का नमस्कार। सुनो दिल से। भारतीय विकेट्स पर विदेशी टीमें और स्पिन गेंदबाजी का हुआ ये कहानी नई नहीं है। स्पिनर्स का खौफ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर भी साफ दिखा और नागपुर में कल से शुरू हुए पहले टेस्ट के पहले ही दिन मेहमान टीम पहली पारी में केवल 177 रन पर सिमट गई। इसमें से 8 विकेट स्पिनर्स के हिस्से आए। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को लेकर कंगारुओं ने चाहे जितनी भी तैयारी की हो लेकिन चाह करके भी वे इनके जाल से बाहर नहीं निकल सके। कल पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने जवाबी पारी में 1 विकेट पर 77 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा और नाइट वॉचमैन रविंद्र जडेजा जब आज दूसरे दिन पारी को आगे बढ़ाएंगे तो लक्ष्य टीम को बढ़त दिलाना और फिर स्कोर को सुरक्षित स्थिति में पहुंचाने का होगा। टेस्ट में भारतीय स्पिनर्स का दबदबा होगा इसका अंदाजा पहले से ही था, लेकिन विकेट लेने का सिलसिला शुरू किया टीम में शामिल 2 विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने। दोनों ने डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा को पवेलियन की राह दिखाई और फिर तो जडेजा और अश्विन ने तबाही मचा दी। स्पिनर के रूप में पहली पारी में केवल अक्षर पटेल विकेटलेस रहे, वरना सभी ने कामयाबी हासिल की। जडेजा को 5 और अश्विन को 3 विकेट मिले। अश्विन ने इस दौरान टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट भी पूरे कर लिए। बुधैया मुरलीधरन के बाद सबसे कम टेस्ट में ये कारनामा करने वाले वो दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलियाई पारी में मार्कस लाबुशेन ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। सीरीज में दोनों देश स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। मेजबान टीम ने शामिल स्पिनर्स के अलावा 4 अतिरिक्त स्पिनर्स को भी नेट बॉलर के रूप में बुलाकर जमकर अभ्यास किया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी आलूर में प्रैक्टिस कर भारतीय विकेट्स पर स्पिनर्स को खेलने का अभ्यास किया। वैसे भी भारतीय स्पिनर्स अपनी धरती पर तेज गेंदबाजों के मुकाबले ज्यादा सफल रहे हैं। सिर्फ पिछले 1 दशक को ही लें तो 65% विकेट स्पिनर्स के खाते में गए। भारत ने सूर्य कुमार यादव और श्रीकर भरत को टेस्ट डेब्यू दिया। ऐसे में ईशान किशन का टेस्ट खेलने का सपना सपना ही रहा। कुलदीप यादव को फिर मौका नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया ने भी स्पिनर्स टॉड मर्फी को डेब्यू करने का मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया की नजर 2004 के बाद भारत में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने की है, लेकिन भारत के लिए बड़ी बात यह है कि उसने 2013 यानी तकरीबन 1 दशक से अपने मैदान पर कोई सीरीज नहीं गंवाई है, जिसे बरकरार रखने के लिए रोहित शर्मा की टीम कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेगी। भारत ने अपनी धरती पर लगातार 15 टेस्ट सीरीज जीती हैं। किसी और टेस्ट खेलने वाले देश ने इस तरह का प्रदर्शन कभी नहीं किया है। भारत ने इस दौरान 42 में से 34 टेस्ट जीते। जाहिर है भारत इस रिकॉर्ड को और बेहतर करने की कोशिश करेगा। वैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से काफी अहम है। ऑस्ट्रेलिया का एक पैर पहले ही फाइनल में है, लेकिन भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए ये सीरीज 3-1 के फासले से अपने नाम करनी होगी। फाइनल में खेलने के दावेदारों में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका भी हैं, लेकिन भारत की कोशिश फाइनल से पहले बची हुई इस आखिरी सीरीज में ही जीत से क्वालिफाई करने की होगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 7 से 11 जून तक ओवल में होगा। पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप अब वहां नहीं होगा। ACC की बैठक में यह तय किया गया है। इसका अंतिम फैसला मार्च में किया जाएगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि एशिया कप के मैच कब और कहां खेले जाएंगे। फिर भी संभावना है कि एशिया कप का आयोजन UAE में होगा। ICC ने फरवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ बनने के लिए जिन 3 क्रिकेटर्स को नॉमिनेट किया है उसमें भारत के शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज के नाम शामिल हैं। तीसरा नाम न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे का है। इस बीच ICC की T20 प्लेयर रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव ने अपनी टॉप पोजीशन कायम रखी। भारत ने पहली बार जब T20 वर्ल्ड कप का खिताब 2007 में जीता था तब उसमें जोगिंदर शर्मा की गेंदबाजी का खासा योगदान था। फिलहाल जोगिंदर शर्मा ने आखिरकार क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। IPL स्टाइल में होने वाली विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का आयोजन 4 से 26 मार्च तक मुंबई में किया जाएगा। इससे पहले 13 फरवरी को 5 फ्रेंचाइज क्रिकेटर्स को ऑक्शन के जरिए अपनी टीमों में शामिल करने की कोशिश करेंगे। ऑक्शन में 1525 रजिस्टर्ड प्लेयर्स में से 409 को अंतिम रूप से लिस्ट किया गया है। इसमें 246 भारतीय और 163 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। 24 प्लेयर्स ऐसी हैं जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया है। महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप आज से दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो रहा है। इसमें 10 देशों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। आज पहले दिन मेजबान दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला श्रीलंका से होगा। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान से खेलेगी। इसके बाद भारत की भिड़ंत 15 फरवरी को वेस्टइंडीज से, 18 को इंग्लैंड से और फिर 20 फरवरी को आयरलैंड से होगी। इससे पहले भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले अभ्यास मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरे अभ्यास मैच में भारतीय महिलाओं ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। इस मैच में ऋचा घोष ने नाबाद 91 रन की पारी खेली थी। भारतीय महिलाओं के लिए ये विश्व कप बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही लीग चरण के सभी मुकाबले जीतने के बावजूद त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में वो हार गई थी। भारतीय टीम पर वैसे भी दबाव होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेटर्स ने इनॉगरल T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। प्रतियोगिता में भारतीय टीम का दारोमदार कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मांधना, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा जैसी प्लेयर्स पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की कप्तान बिस्मा मारूफ अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश में आलिया रियाज, जवेरिया खान और निदा दार जैसी प्लेयर्स पर डिपेंड करेंगी। और अंत में घरेलू क्रिकेट। रेलवे ने 14वीं बार महिलाओं का सीनियर विमेंस वनडे टूर्नामेंट जीत लिया है। रांची में खेले गए फाइनल में रेलवे ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराया। रेलवे को चैंपियन बनाने में स्वागतिका रथ का खासा योगदान था, जिन्होंने सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी शानदार गेंदबाजी की। साथ ही बल्लेबाजी में डी हेमलता ने बेहतर प्रदर्शन किया। वैसे सेमीफाइनल में हार के बावजूद राजस्थान की कप्तान जेसिया अख्तर ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 501 रन बनाए। इसी तरह रेलवे की कप्तान पूनम यादव और पारुणिका सिसोदिया ने सबसे ज्यादा 21-21 विकेट लिए। रणजी ट्रॉफी के दोनों सेमीफाइनल का आज तीसरा दिन है। इंदौर में पिछली बार की चैंपियन मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच चल रहे मैच में बंगाल की पहली पारी 438 रन पर समाप्त हुई। बंगाल की ओर से सुदीप गरामी ने 112 और अनुस्तुप मजूमदार ने 120 रन की शतकीय पारियां खेली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मध्य प्रदेश ने 56 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। बंगाल और मध्य प्रदेश लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। उधर बेंगलुरु में सौराष्ट्र के खिलाफ कर्नाटक ने पहली पारी में 407 रन का स्कोर खड़ा कर लिया। जवाब में सौराष्ट्र ने 2 विकेट पर 76 रन बनाए। कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक जमाया। सेमीफाइनल जीतने वाली दोनों टीमें 16 फरवरी से फाइनल में आमने सामने होंगी। सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 25 क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्रुप मुकाबले का 7वां और अंतिम राउंड 12 फरवरी से खेला जाएगा। इससे पहले 6ठे राउंड तक 5 ग्रुप्स में पॉइंट्स के बेसिस पर गुजरात, पंजाब, रेलवे, मुंबई और वडोदरा की टीमें टॉप पर कायम हैं। तो ये था सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित पॉडकास्ट सुनो दिल से। संजय बनर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।